प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 7 नवंबर 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों आप सबके साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन 41 विशेष नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अब आगे होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। और मित्रों आपको मालूम है कि जो हमारी अगली क्लास है वो 11 मार्च 2018 से शुरू हो रही है जो 15 दिन तक 25 मार्च तक चलेगी। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन हो चुका है और उसके लिए जिन विद्यार्थियों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं मैं उनका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स लिस्ट थोड़ी सी लंबी है इसलिए मैं थोड़ी से आपसे प्रतीक्षा और धैर्य की मांग करूंगा क्योंकि आपको मालूम है कि इस बीच में 15 दिनों तक लगातार जो यहां क्लासेस चल रही थी जो हमारा 7th बैच था उसमें मैं बहुत ज्यादा बिजी था। लेकिन मुझे इस बात की बेहद खुशी है, एकेडमी को इस बात का बहुत आत्मसंतोष भी है कि इस बीच में डेली ऑडियो आप लगातार सुनते रहे हैं। हां अब जो आज से आप डेली ऑडियो लेक्चर सुन रहे हैं अब यह पूरी तरह से ताजा ऑडियो लेक्चर है, ताजा यानी कि आज की बात आज ही। तो मित्रों मैं अब अपने उन 41 स्टूडेंट्स का नाम ले रहा हूं जिन्होंने हमारे अगली क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं गजाधर कुमार आरा बिहार, महेंद्र कुमार रामगढ़ बिहार से, मोहम्मद सुहेल सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, आशीष पांडे मुजफ्फरपुर बिहार से, सैयद अंसारी भाटपार रानी उत्तर प्रदेश से, सृष्टि शुक्ला सासाराम बिहार से, प्रकाश ऐलानी दमोह मध्य प्रदेश से, रवि रंजन कुमार अखरिया फतुआ पटना से, अभिषेक कुमार ठाकुर बांका बिहार से, मधु कुमारी समस्तीपुर बिहार से, वैभव श्रीवास्तव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से, टिंकू कुमार हिलसा बिहार से, दीपक कुमार कानपुर उत्तर प्रदेश से, आलोक सिंह भुसावल महाराष्ट्र से, रविंद्र कुमार बांदा उत्तर प्रदेश से, नीरज कुमार वाल्मीकि लखनऊ से, अतुल कुमार मिश्रा लखनऊ उत्तर प्रदेश से, पर्वत सिंह सूर्यवंशी खंडवा मध्य प्रदेश से, नीतीश कुमार नवादा बिहार से, गजानन पंडित राव मेटकर औंधा हिंगोली महाराष्ट्र से, काजल निगम भार्गवा मध्य प्रदेश से, भोगेंद्र कुमार सिंह पचमनिया मधुबनी बिहार से, शिव शंकर कुमार भागलपुर बिहार से, प्रकाश तिवारी गोपालगंज बिहार से, सोनू कुमार यादव बलिया उत्तर प्रदेश से, ध्यानेश्वर नामदेव करांडे संगोला महाराष्ट्र से, दिलेश्वर प्रसाद रांची झारखंड से, ब्रिजेश चौहान गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, विनोद कुमार बीदर कर्नाटक से, नीतीश कुमार गया बिहार से, पूजा पाल गाजीबाद उत्तर प्रदेश से, विश्वजीत प्रताप सिंह फैजाबाद उत्तर प्रदेश से, अविनाश मिश्रा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, छाया शुक्ला फैजाबाद उत्तर प्रदेश से, प्रभाकर कुमार जमुई बिहार से, ऐश्वर्य रणदिवे चंद्रपुर महाराष्ट्र से, रतन प्रकाश इटावा उत्तर प्रदेश से, परवीन कुमार फरीदाबाद हरियाणा से, शिल्पी कुमारी पटना बिहार से, आदेश कुमार इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से और जय प्रकाश मीना न्यू दिल्ली से। तो गजाधर महेंद्र मोहम्मद सुहेल आशीष सैयद सृष्टि प्रकाश रविरंजन अभिषेक मधु वैभव टिंकू दीपक आलोक रविंद्र नीरज अतुल पर्वत नीतीश गजानन काजल भोगेंद्र शिवशंकर प्रकाश सोनू ध्यानेश्वर दिलेश्वर ब्रिजेश विनोद नीतीश पूजा विश्वजीत, अविनाश, छाया, प्रभाकर, ऐश्वर्य, रतन, प्रवीण, शिल्पी, आदेश और जयकिशन, आप सभी 41 युवा साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आपके साथ एक बहुत अच्छी बात यह है, यानी कि जो नेक्स्ट बैच के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, कि आपको बहुत लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, अधिकतम 4 महीने। यह आपके बहुत ही फेवर की स्थिति है, क्योंकि मुझे मालूम है कि तब आप थोड़े से अपने जोश को बनाए रख सकेंगे, अदरवाइज ये जो जोश है ना, वो धीरे 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 ठंडा पड़ने लगता है। और सच पूछिए, जोश को बनाए रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो फ्रेंड्स, अब इस स्वागत के बाद अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और आज हम लोग थोड़ी बात करेंगे कारोबारी सुगमता पर, कारोबारी सुगमता के बारे में। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं न्यूज एनालिसिस पर। फ्रेंड्स, जो रेडियो की न्यूज है या कुल टोटल मिलाकर के जो न्यूज है, उसमें दो इंपॉर्टेंट बातें मुझे लगी। पहली खबर है डिजिटल भुगतान को लेकर। आपने न्यूज सुनी और उसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि खासकर नोटबंदी के बाद सरकार ने एक अभियान चलाया, भुगतान डिजिटल के माध्यम से करें, तो उसमें बहुत अच्छा इजाफा हुआ है। अखबारों में आपने इस बीच में पढ़ा भी होगा, उसके काफी अच्छे डेटा भी आ रहे हैं। और डेफिनेटली आप जानते हैं, इसके बारे में तो हम लोग कई बार बातें भी कर चुके हैं, कि डिजिटल भुगतान के पीछे ठीक है, कैश का लेन देन नहीं होता है, उससे थोड़ी सी सुविधा हो जाती है, सुगमता हो जाती है, जल्दी भी हो जाती है, जिसको केबीसी में हमारे जो अमिताभ बच्चन जी हैं, आपने देखा है कि 3 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कि बहुत सुविधाजनक है, सुगम है और बहुत तेज है। उसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ा जो इसका कारण होता है, वह होता है जो काला पानी है, काला धन है, उसे रोकने में मदद मिलती है। ब्लैक मनी को इसके माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है, और यह माना जा रहा है कि उसमें काफी मदद मिली है। फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपसे बहुत ज्यादा डिटेल में अभी बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये विषय ऐसा है जिस पर हम लोगों ने काफी बातें की हैं। लेकिन मैं एक सजेशन आपको जरूर दूंगा कि आज रेडियो पर जो पब्लिक स्पीक का जो विषय है, वो लगभग लगभग इसी से संबंधित है, कि विमुद्रीकरण जो हुआ है, नोटबंदी, उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। हालांकि देखिए, जो नोटबंदी अब शब्द चल पड़ा है, विमुद्रीकरण इसका अर्थशास्त्रीय शब्द है, जो विमुद्रीकरण है ये सीधे सीधे डिजिटलाइजेशन से तो नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब आप दोनों को एक तो नहीं ही मानेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उद्देश्य दोनों के काफी कुछ एक से हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस प्रोग्राम को यदि सुन सकें तो जरूर सुने, और आप देखेंगे कि जब ये प्रोग्राम होगा ना, तो डेफिनेटली जो डिजिटलाइजेशन है, उसके बारे में भी कुछ ना कुछ बातें होंगी, उसके आपको आंकड़े मिलेंगे। और सच बात है कि इसके माध्यम से ना, आप हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी सकेंगे, तो ये आपको सुनना चाहिए। फ्रेंड्स, जो दूसरी खबर है वो पैराडाइज पेपर को लेकर है, और आज के अखबारों में आपने देखा होगा कि यह खबर छाई हुई है। इसे बहुत पहले आपने ध्यान दिया होगा, पनामा पेपर लीक्स का मामला आया था। देखिए, जो पनामा है एक एरिया है, वो भी एक पैराडाइज जगह है। यहां जो पैराडाइज पेपर्स कहने का मतलब, पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग। ये किसके लिए स्वर्ग है? ये उनके लिए स्वर्ग है जो अपना धन जमा करना चाहते हैं, बैंकों में रखना चाहते हैं। तो पैराडाइज एक ऐसी जगह है जहां आप धन रख सकते हैं। अब कह लीजिए कि धन तो हम भारत के बैंकों में भी रख सकते हैं, तो भारत भी पैराडाइज है? नहीं, वहां जो धन रखते हैं उनको कुछ अतिरिक्त किस्म के लाभ मिलते हैं। जैसे सबसे बड़ा लाभ जो पैराडाइज में माना जाता है, वो ये है कि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि यह धन आपका कहां से आया है। बस आप बैंक में धन डाल दीजिए, बस खत्म हो गया बात। उनकी जो रूल्स रेगुलेशन है वो आप फॉलो करते रहिए। इसका मतलब है कि अगर किसी के पास काला धन है, तो देखिए, अगर भारत में आप रखेंगे या जो पैराडाइज इसके मामले में नहीं है, तो वो लिखित रूप में होगा और आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये पैसा आपने कहां से कमाया, कहां से आप लेकर के आए। तो बट नेचुरल कि आप उसी पैसे की ही जानकारी देना चाहेंगे जिनके बारे में आपने टैक्स अदा किया हो, या फिर आपके लिखित रूप में वो मौजूद हो। पैराडाइज इसी मामले में है कि वो आपको इसको बताना नहीं पड़ता है, राइट? तो अब एक उसके कुछ पेपर्स लीक हुए हैं। दो कंपनियां हैं खासकर, एक बरमूडा की कंपनी है एप्पल बाई और दूसरा कंपनी है सिंगापुर की एशिया सिटी, उनके पेपर्स लीक्स हुए हैं और उसमें पता लगा है कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोगों के जो धन है यहां के बैंकों में जमा है, है ना। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी है इसको लेकर के। दैनिक भास्कर ने और इकोनॉमिक टाइम्स ने जो एडिटोरियल आज लिखे हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उन्हें देख लेंगे समझ लेंगे तो आपका उससे काफी आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको कह के मुख्य विषय पर आना चाहूंगा और वो है कि आज 7 नवंबर है। आज ही के दिन 7 नवंबर 1917 को रूस में क्रांति हुई थी जिसे हम लाल क्रांति के नाम से जानते हैं, या कह लीजिए कि कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था, मतलब जार की सत्ता पलट दी गई थी और साम्यवादी सरकार वहां आई थी। इसके बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। आज उसकी 100वीं वर्षगांठ है, 7 नवंबर 1917 की यह घटना थी और आज 7 नवंबर 2017 है। चूंकि यह 100वीं वर्षगांठ है तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से जो रूस की क्रांति है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और ये आपके वर्ल्ड हिस्ट्री में है भी। और इसके साथ ही साथ रूस की जो क्रांति है उसके बैकग्राउंड में जो राजनीतिक विचारधारा थी वो जानते हैं आपकी कार्ल मार्क्स की थी, तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और साथ ही साथ जिन्होंने रूस में ये क्रांति की थी वो थे लेनिन, तो लेनिन के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना। आज वक्त नहीं है कि हम उस पर बात करें, लेकिन हो सकता है कि हम फिर आगे चल करके कभी इस पर बातें करेंगे। आइए फ्रेंड्स, अब हम आज के मुख्य विषय पर आते हैं और हमारा मुख्य विषय है कारोबारी सुगमता। दोस्तों, चूंकि इस बीच में ऑलरेडी आप रिकॉर्डेड प्रोग्राम सुन रहे थे तो इस कारोबारी सुगमता के बारे में भारत ने जो एक ऊंची छलांग लगाई है उसकी मैं आपको जानकारी नहीं दे सका था, लेकिन डेफिनेटली पेपर क्लिपिंग्स के माध्यम से आप अपडेट हो चुके हैं और आप अखबार भी पढ़ रहे हैं और न्यूज भी सुन रहे हैं, तो ये आपकी जानकारी में है। मित्रों, ये जो देखिए, मैं अब यहां कारोबारी सुगमता के बारे में आपसे ज्यादा बात करने नहीं जा रहा हूं। मैं आज आपको एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं जो दैनिक जागरण में छपा है डॉक्टर भरत झुनझुनवाला जी का। आप जानते हैं कि बहुत ही उम्दा तरीके से वो लिखते हैं और सबसे बड़ी बात तो है कि ऐसा लगता है जैसे वो आप और हमारे लिए लिख रहे हो, एक सामान्य आदमी को समझा रहे हो। यह उनके लेखन की बहुत ही अद्भुत विशेषता है, विलक्षण विशेषता है। तो आप इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा, आपको सारी चीजें बहुत साफ तौर पर समझ में आ जाएंगी, बहुत ही साफ तौर पर समझ में आ जाएंगी। और बल्कि मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आप जो हैं इसका प्रिंट अपने पास रख लें, ये आपके एक तरीके से फाइल में होना चाहिए, तो मैं उस पर बात करने नहीं जा रहा हूं। मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताने जा रहा हूं कि जब भी इस तरह के टॉपिक आए तो आप उनके साथ कैसा सलूक करेंगे, राइट। देखिए, आपके पास चीजें आ रही हैं, अखबारों में भी चीजें आ रही हैं, जब आप चैनल्स देखते हैं न्यूज चैनल्स तो उसमें भी चीजें आ रही हैं, और आप देखेंगे कि जो चीजें आ रही हैं बड़े कंट्राडिक्टरी किस्म की आ रही हैं, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल विरोध में आ रही हैं। अब आपको इन विरोधों के बीच में सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। विरोध और सामंजस्य कैसे है? जैसे मान लीजिए कि आप दूरदर्शन न्यूज देखेंगे तो दूरदर्शन न्यूज में कारोबारी सुगमता के बारे में जो स्टेटमेंट होगा वो सरकार के फेवर में होगा, और बट नेचुरली कि चूंकि सरकारी मीडिया हो तो सरकार के फेवर में होगा, और वो डेटा के माध्यम से अपनी बात कहेंगे और झूठ नहीं कहेंगे, लेकिन वो डेटा का जो उपयोग करेंगे बट नेचुरली कि वो फेवर में करेंगे। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है अगर साफ तौर पर देखें तो, 130वें से अगर हम 100वें स्थान पर आ गए हैं तो उपलब्धि है, इससे हम नकार भी नहीं सकते। अब आप जब भारतीय जनता पार्टी या उनके अलायंस में जब किसी भी नेता का बयान इस इश्यू पर सुनेंगे तो बट नेचुरल कि वो फेवर में होगा, और हमारे संसदीय लोकतंत्र में ऐसा होना भी चाहिए, है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि सब एक साथ डूबते हैं और एक साथ तैरते हैं का सिद्धांत है, सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। फिर आप देखेंगे कि विपक्ष है ना, कांग्रेस पार्टी या और जो दूसरे विपक्ष में बैठे हैं, वो पता लगेगा कि वो आलोचना ही कर रहे हैं और बिल्कुल अलग छोर पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, वो किसी भी उपलब्धि को मानने को तैयार ही नहीं है इस मुद्दे को लेकर के, उसे फॉल्स कहेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे, तो वो एक दूसरा एक्सट्रीम है, राइट। फिर अब आप आर्टिकल्स पर आ जाइए तो आर्टिकल्स में देखेंगे, आर्टिकल्स थोड़ी से निरपेक्ष इस मायने में होते हैं कि जो लिखने वाला है ये मान करके चले कि सीधे सीधे पार्टी पॉलिटिक्स से तो जुड़ा हुआ नहीं है, वो एक विद्वान व्यक्ति है उस विषय का और वो उन चीजों को अपने तरीके से लिखता है, तो आप थोड़े से इसमें तटस्थता पा सकते हैं, राइट। अब आप देखिए कि जो दोनों तरफ से जो बातें कही जा रही हैं फेवर में और अगेंस्ट में, ये नहीं है कि वो झूठ है, वहां आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत से अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, ताकि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें ब्रिलियंस ही आ सके। अरे आलोचना का मतलब ये नहीं कि वो झूठ बोल रहे हैं, और तारीफ का मतलब भी ये नहीं है कि ये भी झूठ बोल रहे हैं, नॉट एट ऑल। ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप उसमें विश्लेषण के लिए आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो आपको पॉइंट्स लीजिए। फिर आपको एक आर्टिकल्स मिल जाते हैं, उन आर्टिकल में देखिए, तो उस आर्टिकल से आपको फायदा यह होगा कि आपके अंदर एक स्थिरता आने लगेगी, आपके अंदर एक दृष्टि विकसित होने लगेगी, अच्छा ये सच्चाई है, अच्छा इसको इस तरीके से लिया जाना चाहिए, अच्छा इसको इस तरीके से इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। मित्रों ये आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। तो मैं अब इस विषय पर अलग से आपसे कोई चर्चा करने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि यह विषय बहुत ही एक लंबे समय की मांग करता है, और कोई बात नहीं, अगर लंबा समय भी देना होता तो इसको हम लोग कल ले सकते थे, लेकिन चूंकि एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल उस पर आ चुका है, तो मैं नहीं समझता कि मेरी अब कोई विशेष भूमिका रह गई है। मित्रों जहां तक न्यूज़पेपर का सवाल है, मैं आज आपको कुछ और न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार देख लेंगे। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर, और डेफिनेटली जिस तरह से रजिस्ट्रेशन करने वाले स्टूडेंट्स की एक लंबी लिस्ट थी, इसी तरह से आज ईमेल की भी एक लंबी लिस्ट है। इस बीच में मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि लगातार स्टूडेंट ईमेल भेजते रहे हैं, और वो ईमेल मैं लगातार रोजाना बेसिस पर ही पढ़ता रहा हूं। तो सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ईमेल लिखने के इस प्रोसेस को जारी रखा, और उन्हीं में से अब मैं कुछ दोस्तों के नाम ले रहा हूं। इनमें है मित्रों संजीव कुमार भोपाल से, राजकुमार अग्रवाल, विनीत जैन बरायठा से, मनीष कुशवाहा धार मध्य प्रदेश से, विश्वनाथ प्रताप सिंह आगरा उत्तर प्रदेश से, अन्नु प्रताप सिंह आगरा उत्तर प्रदेश से, आशुतोष तिवारी, अमित सागर पटना बिहार से, आशुतोष शुक्ला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, मुकेश कुमार सिन्हा, माही मिश्रा, विंध्येश्वरी प्रसाद त्रिपाठी जबलपुर से, मनीष कुमार बिहार से, राहुल सिंह राठौर, आशुतोष कुमार औरैया उत्तर प्रदेश से, विनय मौर्य बलिया उत्तर प्रदेश से, वीरेंद्र कुमार बेगूसराय बिहार से, सी के मौर्य वाराणसी उत्तर प्रदेश, भगवान सहाय बेरवा टोंक राजस्थान, आयुष मौर्य, परवेश बिश्नोई सिरसा हरियाणा, सोनू पांडे गोंडा उत्तर प्रदेश, धनजीत डेका गुवाहाटी असम, आदर्श श्रीवास्तव प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, अनिका कुमारी, आकांक्षा सिंह, प्रफुल्ल तिवारी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, ओंकार रविन्द्र कुलकर्णी अमरावती महाराष्ट्र, पूनम पाटिल पुणे महाराष्ट्र, श्वेति सिंह, उम्मेद राज पुरोहित बाड़मेर राजस्थान, और साधना यादव। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।